अंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजिभा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषु। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणान्तिके। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद से श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपने हृदय की आंतरिक श्रद्धा उनके चरणों में निवेदन करता हूं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने सारे विश्व में शुद्ध भक्ति की धारा बहाई है। आई नो दैट देयर आर सम डिवोटीज वेस्टर्न डिवोटीज दे कैनॉट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज but even they are here and this transcendental words will go in their ears, oh so much things will be done like fire, knowingly or unknowingly. If anyone is nearer to fire, its heat and light will come automatically. So you can be here even not understanding, but after class Ramchandra Prabhu and Pundarik Prabhu, they will translate my whole things if you like, those who cannot understand. So that is why I am now beginning Srimad Bhagavatam. सबसे पहले हम लोग इस कथा को जो इस संसार रूप संसार में ले आए वो श्री सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं। ये भागवत श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति जो सारे विश्व को एक सेकंड में ध्वंस कर सकते हैं फिर उसे बना सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। बड़े कृपालु हैं, उन्होंने सारी शक्ति कलयुग में भागवत में और नाम में भर दी है। बुद्धिमान लोग और पूर्व पूर्व जन्मों की स्वीकृति करने वाले लोग इस पर विश्वास करेंगे, और जिनको पूर्व जन्म का पुण्य स्वीकृति नहीं है, साधुओं का संग नहीं है, इस पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि कलयुग में ऐसे लोग हैं जो भगवान है, गॉड है, इस पर ही विश्वास नहीं। जो सारे संसार की रचना करते हैं, उनको बुद्धि दिए हैं, उनको गर्भ में भी पालन करते हैं, इस शरीर के अंदर में भी हैं, सर्वत्र अणु अणु में व्याप्त हैं, किंतु मूर्खों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। आप लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में श्रवण करेंगे, और यदि अच्छी तरह से श्रवण किया तो जरूर फल होगा। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इसके लिए मैं दाई हूं, यदि नहीं फल हुआ तो। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ में इसका श्रवण करेंगे, यथा शब्द इसमें जो चीजें हैं, उपदेश हैं, उसको यथाशक्ति पालन करने की भी चेष्टा करेंगे। यं प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातर वो भिनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनिमान। भगवान के जो परम भक्त होते हैं, जैसे गरुड़ जी हैं, नारद जी हैं, हनुमान जी हैं, प्रहलाद महाराज जी हैं, ऐसे भक्त लोग भगवान जैसे ही ये लोग भी अंतर्यामी होते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान होते हैं। इसलिए ऐसे उच्च कोटि के भगवान भागवत भी भक्त भी सर्वअंतर्यामी होते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे भक्तों में से एक हैं, जो बड़े दयालु हैं और सर्वअंतर्यामी भी हैं, जिनका जन्म इस माया जगत में नहीं हुआ। जिस समय अपनी माता के गर्भ में थे, 16 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, इसलिए जन्म नहीं लिया कि माया में जन्म लेना पड़ेगा तो मैं भगवान को भूल जाऊंगा। माता के गर्भ में किसी किसी सौभाग्यवान जीवों को भी भगवान की स्मृति रहती है कि प्रभु जन्म दे देगा तो हम भजन करेंगे, पीछे भूल जाता है। आप लोगों का भी ऐसा हुआ होगा, जब माता के गर्भ में तरह तरह के कष्ट होते हुए होंगे, कीड़े काटेंगे, पान दिया गया है, सिर नीचे पैर ऊपर, कभी मैया गर्म चीज ठंडा चीज खाती है, कटु चीज दवाओं को भी कड़ी कड़ी लेती हैं, ये सब उसको लगता है, पैखाने में भरा रहता है और मल मूत्र में बड़ा दुखी रहता है। अभी याद आप लोगों को नहीं है, किंतु हुआ होगा उसमें भगवान से प्रार्थना की प्रभु जन्म दे देगा तो भजन करेंगे, किंतु फिर भूल जाता है, जहां जन्म हुआ भूल जाता है। सुखदेव गोस्वामी का ऐसा जन्म नहीं हुआ। पहले सुखदेव गोस्वामी जी कौन थे ये थोड़ा सा बतला दूं, और कैसे माता के गर्भ में आए। असल में ये सुखदेव गोस्वामी जी राधा जी के सुक हैं। राधा जी इस सुक को अपने पास में रखती, अपने हाथ पर बैठा लेती, अनार के दाने, दूध और चावल उसको बड़े लाड़ प्यार से खिलाती और कहती, बोलो तो जरा, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बोलो, कृष्णा कृष्णा और कृष्णा। तो सुख पक्षी भी राधा जी के स्वरों में वो नकल करने में बड़ा होशियार होता है, बस नकल करके वो भी वैसे ही बोलता है। एक दिन पक्षी के स्वभाव से यह सुख उड़ करके नंदगांव पास ही में है, बरसाना से नंदगांव बहुत थोड़ी दूर, दो से मिला ही हुआ है, बॉर्डर एकदम मिला हुआ है, और इधर से शहर देखने से वो मालूम होता है जैसे करीब करीब 3-4 मील। तो 3-4 मील उस समय के लिए कुछ नहीं था, अभी कुछ मालूम होता है। पहले कुछ नहीं, दोनों का बॉर्डर मिला हुआ, राधा जी का घर इधर में और कृष्ण का घर उधर में पहाड़ी के नीचे। जो गए हैं वो समझेंगे। तो वो सुख उड़ करके चला गया और एक पेड़ पर बैठकर कृष्ण कृष्ण जो सिखाया हुआ था वो कहने लगा। कृष्ण और मधुमंगल जी दोनों खेल रहे थे। कृष्ण ने देखा ये राधा जी कहां से आ गई, उन्हीं के स्वरों में मीठे रूप में बोल रहा था। इधर उधर देखने पर मालूम हुआ ये एक पेड़ के ऊपर में वो सुख बैठा और वही कह रहा है। तो उन्होंने कहा ये जरा फिर से बोलो। तो फिर से कहने लगा है कृष्ण कृष्ण, और साथ साथ में कुछ रोते हुए स्वर में बोला है, कहा मैं इतना दुर्भागा, मैं बड़ा सौभाग्यवान था जो राधा जी के हाथों पर बैठता और मुझे लाड प्यार करती, खिलाती प्यार से अनार के दाने और मुझसे कृष्ण कृष्ण नाम बुलवाती। मैं दुर्भागा पक्षी जाति के चलने से, स्वभाव के चंचलता से मैं वहां से उड़ करके यहां आ गया। मुझे धिकार है, मुझे धुकार है। कृष्ण देखा ये तो अच्छे अच्छे चीजों को बोल रहा है। उन्होंने बुलाया जैसे पशु पक्षियों को बुलाया जाता है और उड़ करके उनके कंधे के ऊपर यहां पर बैठ गया। कृष्ण फिर जरा बोलो। तो फिर वैसे करने लगा कृष्ण ने लाड प्यार करके और उसको अपने पास में रख लिया। इतने में मैया यशोदा जी आई। इसके पहले ललिता विशाखा जी आई, बोली ये हमारे सखी की का ये सुख है, तुम इसे लौटा दो। उन कृष्ण ने कहा यदि तुम्हारे सखी का है तो उसे बुला लो, हमने तो बुलाया नहीं, अपने आप हमारे पास में आया, तो तुम लोग भी बुला लो तो ये चला जाए तो ले जाओ। किंतु हजार बुलाने पर भी वो गया नहीं। कृष्ण के पास में जो एक बार भी पशु पक्षी मनुष्य आ जाता है फिर वो लौटता नहीं गया। बहुत चेष्टा की, नहीं जब गया तो मैया यशोदा के पास में गई और बोली मैया जरा देखो हमारे सखी का वो सुख है और वो कृष्ण ने पकड़ लिया है और देता नहीं है, हमारी सखी तो मर जाएगी, बिना सुख के रह नहीं सकती, तो उसे हमें लौटा दो। यशोदा जी वहां पर पहुंची और कृष्ण के हाथों से उस सुख को पकड़ करके ले लिया जबरदस्ती और कृष्ण को धमकाती हुई बोली तू बड़ा चंचल है, दिन रात पशु पक्षियों के साथ में खेलता रहेगा, अभी तुम्हारे पिताजी खाने के लिए बैठे हैं, तेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी से चलो। और उनका कान पकड़ करके लेकर के ले ऐसे परब्रह्म को अपना बेटा मान करके अज्ञानी मान करके पकड़ ले। कृष्ण जी हक्के बक्के रह गए और ये सुख को लेकर के और पीछे से ललिता विशाखा को दे दिया, वो लेकर के चली गई। ये कृष्ण भगवान होने पर भी ब्रजवासियों के पश में रहते हैं उनके प्रेम के द्वारा। तो वह सुख था राधा जी का। जब कृष्ण की लीला अंतर ध्यान हो गई ब्रज की और साथ साथ में द्वारका की पूरी लीला समाप्त हो गई, तो जिस समय वो जाने लगे गोलोक वृंदावन में अपने धाम में पधारने लगे, उस समय में उन्होंने सुख को बुलाया, हम लोग दोनों जा रहे हैं, तुम इस जगत में रहना। उद्धव को भी कहा ये जगत में रहेगा और तुम भी रहना, मेरे जाने के साथ साथ में संसार का सब सार चला जाएगा, कलयुग आएगा, लोग अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, बड़ी विचित्र होगी समय। उस समय तुम भागवत की कथा से जगत में ये प्रचार करना जिससे लोगों का कल्याण होगा, नहीं तो सभी चरित्र से भ्रष्ट हो जाएंगे, कोई भी अपने धर्म पर नहीं रहेंगे, यहाँ तक कि सन्यासी ब्राह्मण जितने हैं महिलाएं हैं अपने धर्म से चुप हो जाएंगी, उस समय श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा रहेगा जिसको सुन करके लोगों को प्रेरणा मिलेगी और अपने धर्म में कुछ कुछ स्थिर रह सकते हैं, इसलिए तुम रहो। और रोने लगे कि आप लोग चले जाएंगे, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। ठीक है, हम जो आदेश दे रहे हैं वैसा पालन करो, फिर तुमको अपने पास में बुला लेंगे। सुखदेव जी ठहर गए, वो सुख के रूप में पक्षी के रूप में खोजने लगे कहाँ वो स्थान है जहां जाऊं जहां मुझको भागवत सुनने के लिए मिले, कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए। खोजते खोजते कैलाश पर गए और वहां शंकर जी को देखा। शंकर जी यही भागवत की कथा कह रहे हैं और पार्वती जी सुन रही है। जब कथा आरंभ हुई, आरंभ होने के बाद में कुछ तत्व की बातें हैं। क्या आया? जीव भगवान का नित्य दास है, भगवान को भूल करके इस माया के फेर में पड़ा हुआ है। जब तक भगवान का स्मरण नहीं करेगा जीव, तब तक देवता योनि में, पशु योनि में, मनुष्य योनि में, नाना प्रकार के योनियों में भटकेगा और सब समय बुढ़ापा उसका पीछा करेगी और मृत्यु। बुढ़ापा आएगी फिर उसे मरना पड़ेगा, फिर कभी ऊंचा कभी नीचा जन्म मिलेगा, कभी पशु पक्षी कीट पतंग का जन्म, इस तरह से कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान का भजन करना उचित है। भगवान का भजन करना सहज है, कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम राम कृष्ण गोपाल इत्यादि कर सकता है, इसमें पैसा नहीं लगता, समय की जरूरत भी नहीं है, किसी भी स्थिति में ये कर सकता है। ये सब तत्व आने पर दशम स्कंद की कथाओं को आरंभ होने के पहले ही सुन करके समझ में उतना नहीं आए, स्त्री स्वभाव वशतः सो गई। जो कह रहे थे अच्छा कहो, फिर क्या हुआ? बहुत अच्छा, हूं हूं कर रहा था सु। पार्वती जो पहले कर रही थी अब वो सुख बोलने लगा, वो सो गई। जब सब कथाएं समाप्त हो गई और थोड़ा सा बाकी रहा, उस समय उठ करके बोली, भगवान पति देव हमने भागवत की कथा सुनी, मैं तो सो गई, अभी उठी हूं, आपकी कथा अब समाप्त होने जा रही। मैंने कहा जी तो ये कौन हुंकारी कौन भर रहा था, किसने सुन लिया? खोजते 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 उन्होंने देखा एक घने पेड़ पर जिसमें पत्तियां बड़ी हरी भरी, और उसी के बीच से एक सुख पक्षी बैठा और वही हुंकारी भर रहा। उन्होंने अपना त्रिशूल लिया और खदेड़ा उसको मारने के लिए। वो भगा और पीछे पीछे ये भी शंकर भी अपना त्रिशूल लेकर के उसे मारने के लिए चले। ये कैलाश से जहां बद्री का आश्रम है वो अधिक दूर नहीं है, किंतु फिर भी कम से कम तो 40 दिन लगते हैं, 45 दिन पैदल चलने में, क्योंकि एक पहाड़ी के ऊपर है और दूसरा दूसरे पहाड़ी के ऊपर है। उसको घूम करके जाने में कम से कम तो 140 मील घूमना पड़ेगा, तब वहां पहुंचा जाएगा। किंतु सुख उड़ करके सीधे वहां पर 2 मिनट में पहुंच गए और शंकर भी अपनी तपस्या के बल से उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंचे। वहां पर देखा ये सुख पक्षी महाराज व्यास जी वही कथा सुना रहे हैं और उनकी पत्नी बीटिका जी सुन रही हैं बड़े ध्यान के साथ। वो सोई नहीं और आश्चर्यचकित होकर के वाह इतनी सुंदर लीला कथा, कुछ मुख खुला रह गया। बस सुख पक्षी उनके भीतर में मुख में चला गया और उनके पेट में धीरे धीरे चला गया। अब वो 16 वर्ष तक निकला नहीं, 16 वर्ष तक ये कथाएं भागवत की और दूसरे दूसरे शास्त्रों की सुनी और उनको सभी कुछ पक्षी होने पर भी अब तो बेटे के रूप में आए और सबको सुना। 16 वर्ष के बाद में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अरे भले आदमी 16 वर्ष तक माता के गर्भ में रहा, तू नीचे क्यों नहीं उतरता? उन्होंने कहा जी मैं नहीं उतरूंगा, जहां माया है वहां नहीं मैं जन्म लूंगा। माया को यदि कोई महापुरुष हटा दे तो मैं निकलूंगा। माया माने क्या? मां या मां माने नहीं है, जो उसको वही मानता। क्या चीज? हम शरीर नहीं है किंतु अभी शरीर को ही मान रहे हैं कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हमारे पति हैं, हमारा पुत्र है, हमारी बेटी है, हम अमेरिका वासी हैं, हम इंडियन वासी हैं, यह शरीर से, किंतु यह गलत है। जितने भी संसार में प्राणी हैं उनकी जीवात्मा, वो कृष्ण ही उसके माता पिता सर्वस्व हैं, और उसका बड़ा सुंदर इसमें शरीर है। अभी तरह तरह के कष्ट भोग रहा है, वहां पर कोई कष्ट नहीं। ये सब कथाओं को सुन करके वो बोले, जब तक कि माया नहीं जाएगी मैं नहीं उतरूंगा। व्यास जी ने कहा जी अच्छा मैं माया को हटा देता हूं, मुझे तुम्हारे ऊपर मैं विश्वास नहीं। तो किसके ऊपर विश्वास है? जो कृष्ण अभी जन्म लिए हैं वो यदि आ जाएं और वो ये कहें कि माया को हटा देता हूं, क्योंकि वो मायाधीश हैं, बाकी सब माया में है, इसलिए वो कह दें तो मैं माया तो मैं आ जाऊंगा। व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया और कृष्ण वहां पर उपस्थित हो गए। कृष्ण ने कहा अपनी मैया को कष्ट मत दो, जल्दी से गर्भ से निकल आओ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा आप कौन हैं? तो मैं कृष्ण हूं। ओ आप कृष्ण हैं तो आपके बातों पर विश्वास है। कृष्ण ने कहा जी देखो एक क्षण के लिए माया को हटाऊंगा, एक सरसों का दाना तलवार की धार पर जैसे देने से वो जितना देर ठहरता है उतने दिन के लिए माया हटा दूं, उतने देर के लिए तुम इसी के बीच में निकल आओ, बस उतने क्षण के लिए। बस माया हटाया और उसमें जन्म लिया, इसलिए उनको माया ने कुछ किया नहीं। समझते रहे जी मैं भगवान का दास्य हूं, मैं आत्मा हूं, कृष्ण ही हमारे सर्वस्व, इस चीज को समझा। और माया में आकर के साथ ही साथ में अभी गर्भ से उसकी नाड़ी का छेदन नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुआ, उसी अवस्था में वो माता के गर्भ से निकल करके जा रहा है, भाग रहा है। उसके पिताजी ने देखा ये तो मुक्त महापुरुष है, सारी भागवत की कथाएं शास्त्रों का निचोड़ सार समझा है, ये रहता तो बहुत ही अच्छा, ऐसा पुत्र तो भगवान किसी को दे तो हमको दिया, फिर ये पुत्र भी जा रहा है। वो आगे आगे चला और पीछे पीछे ये हा बेटे हा बेटे हा पुत्र कहते हुए पीछे से चले। सुखदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उत्तर दिया पेड़ों ने प्रतिध्वनि के रूप में, पुत्र तो वो भी कहते हैं जो पुत्र, हा पुत्र तो वो भी कह रहे हैं जो हा पुत्र, कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। अधिक से अधिक 100 वर्षों में दोनों में विच्छेद हो जाता है, चाहे स्त्री और पति हो, पुत्र और पिता हो, माता हो पुत्र हो, वो जरूर होगा। इसलिए कौन किसका पुत्र। सुखदेव गोस्वामी पीछे पीछे चले, कुछ देर के बाद में उन्होंने देखा एक सुंदर सरोवर है कैलाश के पास, और सरोवर में कुछ स्त्रियां नंगी स्नान कर रही हैं। इन्होंने सुखदेव को देखा, अपना स्नान करती रही और पीछे से वयोवृद्ध व्यास जी, जैसे इनकी श्वेत दाढ़ी है देखिए और केश हैं, इनकी उम्र अभी अधिक से अधिक 50-55 की होगी, 60 की होगी, और उनकी उम्र कितनी थी, हजारों वर्ष की। उस समय आदमी हजारों वर्ष की आयु लेकर के आता था, किसी किसी की लाखों वर्ष की आयु होती, 50,000 वर्ष तो तपस्या साधन भजन करता था। तो वो सुखदेव गोस्वामी को देखा वैसे स्नान करती रही, किंतु जब वहां पर व्यास जी पहुंचे तो बहुत दूर से व्यास जी को देख करके जो आ रहे हैं उनको प्रणाम किया, जल्दी से जल से निकल करके अपने वस्त्रों को धारण किया और हाथ जोड़ करके एक तरफ में खड़ी हो गई। व्यास जी ने पूछा अरे मेरी बेटियों और नातिनियों नातिन, पड़पोते, पड़पोतियां तुम, हमें देख करके लज्जा से यहां खड़ी हो गई। और हमारा बेटा नंगा 16 वर्ष की उम्र का एकदम जुआ बसता, उसे देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई, हमें देख करके लज्जा आई, क्यों? तो उन्होंने पूछा, वो तो हमें लकड़ी की भांति देख करके आगे बढ़ गया, और आपने हमसे ये पूछा क्यों, ये प्रश्न क्यों किया? तो आपके अंदर में स्त्री पुरुष का भाव है, किंतु इस बेटे के अंदर में ऐसा नहीं, वो तो हमें सूखी हुई लकड़ी की भांति देख करके चला गया, कुछ देखा ही नहीं कि स्त्री बैठा है कि पुरुष बैठी है कि क्या है नहीं है। ऐसी सुखदेव गोस्वामी हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी को वो प्रणाम कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कैसे हैं? परम मुक्त हैं, किंतु व्यास जी नारायण हैं, भगवान, उनको बड़ी दया आई, हमारा बेटा ऐसा जोगी बन करके चला गया, कृष्ण की कथाओं को तो सुना नहीं, इसका माधुर्य रस का आस्वादन नहीं किया, इसके भगवान को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नहीं? इसके माता पिता नहीं है, किंतु हमारे जो कृष्ण हैं वो कैसे हैं? उनको भूख लगती है, बेटे होकर के आते हैं, किसी के मित्र होकर के आते हैं, किसी के बंधु होकर के आते हैं, किसी के प्रियतम होकर के आते हैं, किसी के पति होकर के आते हैं, राम इत्यादि लीलाओं में, कृष्ण लीलाओं में। पर ब्रह्म हो करके भी ऐसा मत समझो जो पर ब्रह्म जो भगवान है उनका रूप नहीं है, बिना रूप का कोई नहीं हो सकता है, इस चीज को समझना, निराकार निर्गुण है ऐसा नहीं, जो अरूप शब्द है निर्गुण है निराकार है, इसमें आकार प्रधान है, इस चीज को समझो, यदि रूप नहीं होगा तो अरूप नहीं बनेगा, आकार नहीं होने से निराकार नहीं बनेगा, गुण नहीं रहने से निर्गुण नहीं बनेगा, इसलिए ये जरूरी चीजें हैं। भगवान का रूप है, भगवान में गुण है, नहीं तो ये सारे विश्व का सृजन कैसे कर सकता है, जरूर रूप उसका है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, कैसे? जैसे पानी है, पानी को लोटे में रख दो, थाल में रखो, नदी के रूप में है, समुद्र के रूप में हो सकता है, जिस प्रकार का बर्तन होगा उसका रूप धारण कर लेता है, किंतु पानी को तो हम देखते हैं, पानी निराकार नहीं, उसका गुण भी है, उसको पीने से हम बचते हैं नहीं तो मर जाएंगे, इसलिए पानी का रूप है, किंतु यू कैन नॉट डिफाइन इट, इसका शेप क्या है नहीं डिफाइन कर सकते। उसी प्रकार से भगवान जो हैं, वो उनमें रूप जरूर है, और उनका यही सर्वोत्तम रूप कृष्ण का है, जो बंसी बजाने वाले नंद नंदन है, यही है, इसलिए श्रीमद भागवत में बतलाया गया, एते चांस कला पुंसस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहां तक कि राम भी हैं, भगवान ही हैं, कोई अंतर नहीं, फिर भी सबका मूल ये कृष्ण बंसी बजाने वाले नंद नंदन है, समस्त कथाओं का सार ये है। यदि हम लोग कृष्ण नाम करेंगे तो हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, तत्व ज्ञान आएगा, और हम लोग जीवन में सुखी रहेंगे, दूसरे जन्मों में भी सुखी रहेंगे, इस चीज पर जरूर विश्वास रखें। तो ये सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे परम मुक्त हैं, माया में नहीं आए, और वो परीक्षित महाराज जी को इन्होंने कथा सुनाई, क्यों? परीक्षित महाराज जी भूमंडल के राजा थे, केवल भारत के ही नहीं, बड़े ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, धनी थे, उनके लड़के थे, उनकी सुंदरी पत्नी भी थी, किंतु जिस समय में वो एक बार कहीं दिग्विजय के लिए जा रहे हो, आखेट के लिए जा रहे थे, उनको प्यास लगी, और प्यास लगने पर एक ऋषि के आश्रम में गए, और ऋषि से बोले, मुझे प्यास लगी है, पानी दो, किंतु ऋषि ऐसे ध्यान में मग्न थे, कृष्ण के चिंतन में, जो उनको शरीर का होश वाश नहीं था। आज के लोग इस पर विश्वास नहीं करते, मानो परीक्षित जी उसी को दिखला रहे हैं। उन्होंने सोचा जे हमें देख करके इसने आंख बंद कर लिया, साधारण सा व्यक्ति कोई है, इसलिए बार बार मांगने पर भी पानी नहीं दिया। कहीं उन्होंने पूछा यदि पानी नहीं दे सकते तो तुम धार्मिक क्या हो सकते, ऐसे लोग समझते हैं, किंतु बात ऐसी नहीं। वो ऋषि भगवान का ध्यान कर रहे थे और उस समय उनके ध्यान में भगवान कृष्ण थे, इसलिए कानों से सुना नहीं। परीक्षित महाराज जी ने, अच्छा तो तुमको हम कुछ पुरस्कार देंगे। एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाया और उनके गले में लपेट दिया और वहां से चलते बने। उसका ऋषि का बेटा पासी में खेल रहा था 5 वर्ष का। कुछ लोगों ने बतलाया तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने सांप लगा दिया, मरा हुआ। वो सुनकर के रोने लगा। वहीं पर कोई नदी थी, पानी पिया, आचमन किया और आचमन करके अभी नंगा धड़ंगा और पानी लेकर के ब्रह्म श्राप किया, जिसने हमारे पिताजी के गले में ये सांप लगाया है 7वें दिन बिना किसी शंका के जरूरी सांप उसे काटेगा और वो मरेगा जिसने लगाया, कोई बचा नहीं सकता। और इसके बाद में वहां से आकर के पिताजी की गोदी में बैठ करके रोने लगा। जब जोर से रोने लगा तो उसके पिताजी का ध्यान खुल गया। अरे बेटा रो क्यों रहा है? तो उसने सांप को दिखाया, तो आपके गले में सांप है, किसी ने डाल दिया। तूने क्या किया? अरे तुमने सांप तय डाला, देखा जिसे सांप के लिए इसने सांप दे दिया। अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है, तुमको क्रोधित नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत धर्मात्मा राजा हैं, ये परीक्षित जी ने किया। अब तो संसार कुछ भ्रष्ट होने वाला है, मालूम होता है जब कलयुग का प्रभाव आएगा, तुमको सांप नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण के बेटे तुमको सहिष्णु होना चाहिए, छोटी छोटी बातों के लिए नहीं ऐसा होना, तुमने ऐसा कर दिया। और कुछ बोले नहीं और बोले अपने 2 छात्रों को, बटुक जाओ महाराज परीक्षित से जाकर के बतलाओ जो तुम्हारे ऊपर में 7 दिन का समय है, जो कुछ करना है कर लो, 7वें दिन तुमको जिस न किसी न भाव से सांप आएगा और काटेगा और तुम मरेगा। उनका तो 7 दिन निश्चित था, हमारा 7 दिन भी निश्चित नहीं, इस चीज को समझिए। परीक्षित महाराज, इट वॉज फिक्स्ड दैट ही विल डाई आफ्टर 7 डेज, बट फॉर अस नथिंग, कोई भी ठीक नहीं है। अभी विवाह करके एक परिवार जा रहा था और इतने में नहीं, अभी भारतवर्ष के एक बड़े कांग्रेस के लीडर, उनका नाम था पायलट, और वो जा रहे थे दिल्ली से कहीं एरोप्लेन से जाएंगे और बीच में किसी से टक्कर लग गया और रास्ते में ही वो मर गए। अभी कल परसों की बात है। सब लोग उनके घर के देश के विदेश के लोग रो रहे हैं उनके लिए। क्या वो जानते थे जो मेरी मृत्यु हो जाएगी? अभी बच्चा है उसकी भी मृत्यु हो सकती है, बूढ़े की नहीं भी हो सकती है, कोई ठीक नहीं, नहीं? इसलिए आज से ही भगवान का नाम आरंभ कर देना चाहिए, इस चीज को समझना चाहिए। ये आत्मा के लिए भगवान ने एक घर दिया है बिना पैसे का, बहुत सस्ता और सुंदर घर, जब समय आएगा तो वो लौटा लेगा। रोएगा घिघियाएगा, एक मिनट के लिए समय नहीं देगा, उसी समय में खाली करना होगा। इस चीज को भी समझिए, याद रखें, भूले मत। ये भारतीय संस्कृति है और कहीं नहीं है। लोग जूतों के लिए लड़ाई करते हैं, केस करते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं जानते। ये ज्ञान जो है तत्वज्ञान केवल भारतवर्ष की संपत्ति, आप लोग भी भारत के हैं, इसे कभी भूलिएगा मत। फिर क्या कह रहा था? अच्छा, 7वें दिन तक्षक आया, रास्ते में आ रहा था और एक कश्यप नाम के बड़े भारी धन्वंतरी जैसे व्यक्ति समस्त जड़ियों बूटियों को लेकर और मंत्र जानने वाला आ रहा था। अभी भी भारतवर्ष में बहुत से मंत्रज्ञ हैं, किसी को सांप ने काट दिया और ओझा को मालूम हो गया तो वो फोन से ही बस मंत्र करेगा और ऐसे ऐसे करेगा, वहां पर ठीक हो जाएगा। हमने अपने आंखों से देखा हुआ है, करीब करीब मर चुका व्यक्ति और वो भी ओझा आकर के मंत्र जप करके और थोड़ा सा कुछ किया बस ठीक हो जाता है। मंत्र में भी शक्ति अभी ऐसी भी है। वो आया, वो आ रहा था, इतने में वो सांप मिला, वो काला व्यक्ति का रूप धारण करके और वो सांप आ रहा था। उसने पूछा इनसे, कश्यप जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं परीक्षित की सभा में जा रहा। किस लिए जा रहे? सुना है उसे सांप काटेगा, मैं उसे जीवित कर दूंगा। तो तुम नहीं जीवित कर सकते, तो मैं कर दूंगा। अच्छा तो देखो, मैं ही वह तक्षक हूं, मैं जा रहा हूं और मैं इस बरगद के पेड़ को जो एकदम हरा भरा है, इतना बड़ा, मैं अभी काटता हूं, अभी ये जल करके भस्म हो जाएगा, तुम इसको बचा दो। तो अच्छा ठीक है, काटो। बस एक हरे बड़े बड़े वृक्ष को उसने अपने फन से काटा सांप बनकर, और साथ ही साथ में वो वृक्ष एकदम सूख गया, नीचे से ऊपर तक जल करके राख हो गया। और फिर इस ब्राह्मण ने कश्यप ने क्या किया, अपनी जड़ी बूटी घोट करके और मंत्र पढ़ करके आंख बंद करके ध्यान करके और उसके ऊपर में वो जो औषधि थी उसके ऊपर में जड़ में फेंक दी। किंतु वहां से भी न जाने कैसे देखते देखते उसमें हरे भरे पत्ते एकदम लग गया, देखते देखते विराट बरगद का वृक्ष हो गया। कहे ये तो जिला देगा। कहने देखो, एक थाल भर करके असर पीस होने की उसके सामने रख दी, इसलिए तो जा रहा है, तो ये ले लो। नहीं भाई नहीं, दो तीन थाल और भर करके दे दिया, उनके मुख से पानी आने लगा, रुपए वो सोने ले लिए और वहां से लौट गया। तब से ये मंत्र सब सारहीन हो गए। पैसा जहां लिया खत्म हो गया। जो विद्या पैसे के द्वारा पढ़ाई जाती है वो क्या होगी, वो सुख नहीं दे सकती, कुछ दिनों के बाद में नुकसान हो जाएगा। जो भागवत की कथा कहते हैं और उसके बदले में पैसे ले लेते हैं, उनके उपदेशों का फल श्रोताओं पर नहीं पड़ता ना? तीर्थों में अनाड़ी सब लोग आ गए। रिक्शा वाले वृंदावन में जाएंगे, दो चीजों तीन चीजों का उत्पाद देखेंगे, वहां ब्राह्मण भी किसी न किसी रूप में आपके सब पैसे निकालने की कोशिश में करेंगे, जो पंडे कहलाते हैं। और बंदर तो ही है, आपके चश्मे ले लेंगे पॉकेट से, छोटे छोटे बच्चों को भी ले लेंगे, और जब तक कुछ नहीं देंगे नहीं लेंगे। तो जहां पर ऐसे लोग अनाड़ी लोग बदमाश लोग घुस गए, तीर्थों का सार चला गया, भागवत की कथा का सार किस लिए चला गया? आजकल भारतवर्ष में भागवत पढ़ने वाले की और बांचने वाले की कमी नहीं, सब जगह कर रहे हैं, किंतु फल नहीं हो रहा। क्यों? उनका उद्देश्य पैसा लेना है, न अपने एकादशी करते हैं, न उसकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, न गुरु करते हैं, केवल अनुस्वार विसर्ग पढ़ लिया, थोड़ा सा भागवत पढ़ लिया कहीं से, और बस पैसा कमाने का एक धंधा हो गया। इसलिए कथाओं का भी साथ चला गया, इसलिए लोग पढ़ करके भी सुन करके भी उनको कुछ हृदय में जाता नहीं है। इसलिए कहां कह रहा था, हाँ तो वो चला गया। और इसके बाद में क्या हुआ, तक्षक आया और उस समय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित जी को 7 दिन की कथा सुना चुके थे और बोले जी आप तुम्हारे पास में तक्षक तुमको छू नहीं सकेगा, तुम कौन है? उन्होंने कहा जी मैं आत्मा हूं, अब तुमको नहीं छुएगा, कभी नहीं। ये शरीर तो मट्टी का है, मट्टी वो सर्प भी है, इसको स्पर्श कर सकता है किंतु तुम इससे अतीत हो जाएगा। ये कह करके और सुखदेव गोस्वामी वहां से चले और इन्होंने कहा जी मुझे अब तनिक भी भय नहीं है। भगवान की चिंता करते करते आत्मा को शरीर से निकाल करके मन में, और मन को भी निकाल करके, मन से भी आत्मा को निकाल करके भगवान के चरणों में गोलोक वृंदावन में भेज दिया, चले गए। और इधर सर्प ने आकर के एक माला थी उसके अंदर में प्रवेश कर गया, फूल के अंदर, और जब ही माला उनको पहनाई सांप का रूप धारण करके उनको यहाँ काटा और बस वो शरीर जल करके भस्म हो गया। और परीक्षित महाराज जी क्या हुए, भगवान के नित्य परिक्रमा के रूप में कृष्ण के पास में चले गए। यहाँ पर सर्प का पिता बाप भी नहीं जा सकता, परम सुखी हो गए। इन कथाओं को जो श्रवण करेगा उनका अवश्यमेव कल्याण होगा। आप लोग 7 दिनों तक धैर्य धारण करके 1 घंटा भी सुने, यदि इसको 1 महीने में कहा जाए सवेरे और शाम तो पूरी तरह से होगी। और वो कथा सात्विक है, 7 दिन में केवल श्लोक को पढ़ने से संभव है, तो श्लोक से कोई परिचित नहीं। हम लोग तो श्लोक में कह सकते हैं किंतु आप लोग नहीं समझे, नहीं समझा ही नहीं तो फिर उसका फल क्या है। इसलिए उसके अनुवाद के रूप में भी आप यदि 7 दिन का भी समय दें और 1-1 घंटा भी, मैं कहता हूं ये कथा 7 दिनों में भी होती है किंतु उसी रूप में, और उसमें 3-4 घंटा सवेरे 4 घंटा शाम को, उनके साथ में दूसरे रहते हैं जो भागवत पढ़ते रहते हैं पूरा, और एक जो होते हैं प्रमुख वो भागवत की कथा कहते हैं और तब सब लोग उसको सुनते हैं। तो इतना समय आप लोगों को नहीं ये सवेरे दे सकते हैं, यहां सवेरे समय दिया तो गड़बड़ हो जाएगा नौकरी चाकरी इत्यादि का जिसके लिए आप लोग आए हैं। इसलिए शाम को ही कथा होगी, 6:30 यदि आ सके तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं आएंगे तो और 15 मिनट लेट करके, किंतु आइए 8:30 बजे तक हम लोग कथा समाप्त करेंगे। और प्रतिदिन ये 7 दिन तक हम हरी कथा कहेंगे। ये मत सोचेंगे जी ये अंत में इतना प्रणामी देना होगा या ये कुछ प्रणामी देना है, ये मत समझिए। हमारे लिए आप लोग जो श्रद्धा लेकर के सुनेंगे यही सबसे बड़ी प्रणामी होगी, केवल इसी के लिए आया। भारतवर्ष में हम लोग भूखे नहीं मरने वाले, भारतवर्ष अभी ऐसा नहीं हो गया जो लोग सभी भूखे मर रहे हैं, इसको समझिए। बल्कि वहां के गरीब आदमी भी हैं, यहाँ के धनी लोगों से लाख गुना शांतिपूर्वक है, क्योंकि भगवान का पूरा विश्वास है। सबके लिए नहीं कहता, किंतु अभी भी जो भारतवर्ष में लोग हैं उनके अंदर के रक्त में वो भारतीय संस्कृति बैठी हुई है। इसलिए हम लोग खाने के अभाव में यहाँ नहीं आए, बल्कि आप लोगों को भी जीवित रखने के लिए, सुखी होने के लिए हम लोग आए। इसलिए 7 दिन का समय हमें देंगे, यदि समझ में नहीं आए तो आप पूछेंगे उसका उत्तर भी हम देंगे। इसका अतिरिक्त भी हम जहाँ पर रहते हैं अभी 4 दिन तो किसके घर पर भी है, सुशील अग्रवाल जी के, इसके बाद में हम लोग अरुण वर्मा के घर पर जाएंगे। आप लोगों को समय मिले कभी भी हमसे आकर के आप लोग कुछ सुन समझ सकते हैं, शंका होगी तो आप लोग कुछ प्रश्न भी करेंगे। अब मैं कथा यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ, अब 8:30 बजने वाले हैं, तब जैसे भी होगा धीरे धीरे ये कथाओं को हम, इसमें जो विशेष तत्व ज्ञान की बातें हैं, कुछ लीला कथाएं हैं, उसके अंदर में भी बहुत सी भावनाएं हैं, उनको समझाने की चेष्टा आपको करूंगा, आप लोग समझने की चेष्टा करेंगे। कृष्ण की लीला समाप्त हुई। समाप्त होने के बाद में जब कृष्ण की द्वारका लीला भी समाप्त हो गई, महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया, कृष्ण अपने स्वधाम जाने के बाद में 30 वर्ष के बाद में परीक्षित महाराज जी के पास में वो सर्प आया, और उस समय सुखदेव गोस्वामी उनको भागवत की कथा सुनाई थी। इसके बाद में 200 वर्ष बाद सनत कुमार आदि, सनत सनंदन, सनत कुमार इत्यादि 4 कुमार जो सब समय 5 वर्ष की उम्र वाले होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं आती और उनकी बुढ़ापा भी नहीं आती, भगवत अनुभूति करने वाले, सब समय भगवान के लीला में सब समय मस्त रहने वाले, वो नारद जी को इसकी कथा सुनाई 7 दिन में। और इसके बाद में 30 वर्ष और लगा लीजिए, माने 230 वर्ष के बाद में, माने धुंधकारी की पहली, इसके बाद में इनकी कथा हुई चारों कुमारों की, पहले धुंधकारी की कथा हुई, किंतु उन्होंने बतलाया उन्होंने ही संरक्षणंदन ने, तो ये इसकी 3 सीटिंग हुई जिसमें भागवत को ये कहा गया पहली कथा ये है कि किसी समय में पहली तो कथा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी की बतलाई, दूसरी कथा ऐसी कि किसी समय में नारद जी विश्व भ्रमण के लिए निकले और भारतवर्ष में आए। भारत के अतिरिक्त कहीं भी दूसरी जगह गंगा नहीं है और नदियों का पानी गंदा सड़ जाता है। इसका पानी, गंगा का पानी चाहे एक वर्ष, दो वर्ष, दस वर्ष रखो, वो कभी भी गंदा नहीं होगा, वो सड़ेगा नहीं, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। उसमें बहुत सी विचित्रताएं हैं, तो वो गंगा नदी भारतवर्ष में है। वहां हरिद्वार है, हरिद्वार वहां पर काशी, कांची, अवंतिका इत्यादि नगरियां हैं, बड़े बड़े तीर्थ हैं जो विश्व में नहीं है। यहां पर आत्मज्ञानी ऋषि महर्षि लोग आज भी वहां पर हैं। तो मैं सोचा था जब भारतवर्ष में जाऊंगा, हरिद्वार में जाऊंगा, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, वृंदावन में जाऊंगा और सब जगहों में जाऊंगा, जाकर के मुझे कुछ शांति मिलेगी। तो मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, इधर उधर में विचरता रहा, जब मुझे कई सुख और शांति मिले, किंतु कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। शांति कहां मिलती है? यहां प्रेम हो, विवाह हुआ, पति बहुत योग्य है, पढ़ा लिखा है, और एक महीने में वो कितने लाख रुपए कमा लेता है, और स्त्री भी बहुत योग्य है, उसको भी 40,000 या 50,000, 1,00,000 रुपया वो भी अपना कर लेती है, दोनों संसार में है। किंतु बैंक अकाउंट अलग अलग है। ये सब रहते हुए दोनों में यदि प्रीति नहीं है तो जीवन में सुखी रह सकती हैं या नहीं, आप ही लोग विचार करके देखें, रह सकते हैं? और एक व्यक्ति गरीब भी है, मजदूरी से पैसा लाता है, किंतु पति और पत्नी में दोनों में प्रेम है, ये सुखी रहेगा? इस चीज को अच्छी तरह से समझिए। जहां प्रेम नहीं है वहां पर सुख और शांति कभी भी नहीं रह सकती, और यदि प्रेम है तो जिस अवस्था में भी रहेगा, वास भी रहेगा, तो उसमें बड़ा सुख और शांति रहेगा। तो उनको कहीं भी शांति नहीं मिली उस समय। क्यों? कृष्ण के जाने के बाद में पृथ्वी को कलयुग ने ग्रास कर रखा था। कलयुग माने क्या? कली, क, कलहम, ल, लाति, बिना कारण का भी कलह कर देगा, परस्पर झगड़ा लगा देगा। आज देखेंगे सब जगह मैं देखता हूं, विशेष करके पाश्चात्य देशों में देखता हूं, पति का स्त्री पर विश्वास नहीं, क्योंकि वो 10 बार तलाक दे करके उसके घर में आई है, और स्त्री का भी पति पर विश्वास नहीं, वो भी देखिए ये 10 बार के तलाक दिए हुए हैं, विश्वास नहीं है। हाँ, विश्वास एक चीज पर है, कुत्ते पर, एक कुत्ता, दो कुत्ता, तीन कुत्ता रख लेंगे, उसके लिए बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे, अपने जीवन का, अपनी स्त्री को और बेटे को अपनी संपत्ति लिख करके नहीं जाएंगे, किसको लिख करके जाएंगे? हाँ, फॉर डॉग, गॉड, GOD, DOG, उल्टा, भगवान पर विश्वास नहीं, बच्चों पर विश्वास नहीं, बेटे पर विश्वास, सारी संपत्ति रजिस्टर्ड करके जाएंगे, कुत्तों का एक विशाल अस्पताल हो और कुत्तों के लिए रिसर्च हो, जैसे कुत्तों को कैसे सुखी रखा जा सके। सब जगह मैंने देखा, मैंने कहा कि ये क्यों ऐसा देखते हैं कि सभी लोग कुत्ते इतना पावर करते? इसीलिए जब तक जीवित रहता है तब तक कुत्ता कुछ स्वामी भक्त भक्त भी होता है, इसलिए रात में छोड़ देते हैं, खोल देते हैं, दिन में बांध करके रखेंगे और वो पहरा देता है, कोई भी नहीं आएगा, इसलिए कुत्ते पर विश्वास करते हैं। क्यों? इसलिए कि जगत में, कलयुग में कलह परस्पर में हो जाता है, ठीक नहीं है, या कोई जो 2 दिन के बाद में स्त्री से या बेटे से झगड़ा नहीं होगा और वो छोड़ करके हमको दूसरी जगह नहीं चली जाएगी। अब यह व्याधि भारतवर्ष में भी फैल रही है, यहाँ पर भी बहुत से लोगों के मुख से हमने सुना है कि हम लोगों में भी ये, भारतीय संस्कृति में भी ये बुराई घुस रही है। आप लोगों से नम्र निवेदन है, इस बुराई से बचने की चेष्टा करेंगे, यह पवित्र बंधन है, इस बंधन को चौपट मत करें। प्रवित्त बंधन इसलिए है कि उसमें प्रतिज्ञा करते हैं दोनों मिलकर के माता पिता की सेवा करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे और दोनों मिलकर के भगवान की सेवा करेंगे और सुखी रहेंगे। तो प्रॉमिस नष्ट हो जाती है, प्रतिज्ञा नष्ट हो जाती है, इसलिए सुखी शांति से नहीं रह सकते। इसलिए वो मैं चारों तरफ में घूमता रहा और देखा क्या, अब इस पृथ्वी पर जीने के लिए धर्म के चार पैर होते हैं, सत्य तप शौच दया दान। अब जगत से चला गया, कोई भी अब सत्य नहीं बोलते ने? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? गायत्री। सच बोल रही है? तुम अपने कपड़े का नाम बतला रही है या भीतर आत्मा का? हाँ तो ये झूठा हुआ। तुम्हारे पति का नाम क्या है? अच्छा, कितने दिन से हैं? उसके पहले क्या थे? और फिर पीछे जब दोनों में जुदाई हो जाएगी तब? इसलिए जगत का जो कुछ सत्य है यह सत्य नहीं है, तात्कालिक सत्य है, इस चीज को समझिए। सभी लोग झूठ बोलते हैं, दया नहीं है, तप नहीं है, दान तो किस लिए? दान देते समय में जरूर फोटो लेना चाहिए, नहीं तो दान कैसा? हमारे साथ में अभी परिक्रमा हम लोगों ने की ना, तो बार बार फोटो आ रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी। देखो ये भागवत भी सुनने जाएंगे और ये हमने कलश कहा लेने के लिए तो अभी ये फोटो खींचा जा रहा है, ये पेपरों में आएगा, लोग देखेंगे और इसका फल जो है सब पूरी जाएगा। ये इसलिए ऐसा ही देखा उन्होंने, देखा क्या, जो भी बेचारे इस जगत में जीव हैं वे असत्य बोलने वाले हैं, अपनी स्त्री से भी झूठ बोलते हैं, अपने पति से भी वो झूठ बोलती हैं, आजकल का बेटा भी बाप से झूठ बोलता है, विशेष करके पाश्चात्य देशों में जहां वो 15-16 वर्ष का हुआ फिर माता पिता से कोई संबंध नहीं, फिर तो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया बस, चल आलसी मंदबुद्धि भाग्यहीन हो गए। जो साधु संत कहे जाते हैं, जो घर बार छोड़ करके आए हैं, उनके लिए भी कहते हैं ये पाखंडी हो गए हैं। किस लिए? घर छोड़ करके आए, स्त्री को छोड़ करके आप फिर यहां दूसरी स्त्रियों से प्यार करने लगे, पैसा घर में छोड़ करके आए और यहां पर फिर पैसा बनाने लगे, बड़े बड़े 3 मंजिले 4 मंजिले 10 मंजिल घर बनाने लगे, क्या क्या करने लगे, जो गृहस्थ लोगों को नसीब नहीं है। और ये क्या करते हैं? ऐश्वर्य से ठाठ से रहते हैं, इनके सोने के खड़ंग होते हैं, इनके घरों में आपके घरों में जैसे हैं उनसे लाखों गुना वहां पर श्रेष्ठ। तो इसलिए कहते हैं पाखंड, देखने में तो परम विरक्त हैं किंतु स्त्री और धन सभी को घर में रखते हैं, घर में स्त्रियों का राज्य, साले सलाहकार बने हुए हैं, लोभ से कन्या, आजकल कन्याओं की बिक्री हो रही, विवाह नहीं कन्यादान नहीं रहा है। हम सुनते हैं 12 लाख हमारी लड़की की शादी में लग गया, किस लिए? किस लिए 12 लाख रुपया नहीं है तो लड़की की शादी नहीं होगी, साधारण जो सभ्य कहे जाते हैं, क्यों है? पहले पहले ये सब चीजें नहीं थी, कन्या का दान होता था वो ग्रहण करता था और उसको अपनी अर्धांगिनी बना करके रखता था। आजकल सब ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्या स्त्री और पुरुष में सब समय कलह लगा रहता है, महात्माओं के आश्रम तीर्थ नदियों पर जवनों का अधिकार, हमारे भारतवर्ष में कृष्ण की जन्मभूमि मुसलमानों के अधिकार में, अयोध्या की जन्मभूमि मुसलमानों के अधिकार में है, काशी विश्वनाथ मुसलमानों के अधिकार में, जहां भी देखो सब ऐसा ही। दुष्टों ने देवालयों को नष्ट कर दिया, इस समय न जो योगी है न सिद्ध है, ओ कली काल के आग से सभी भस्म हो रहे हैं। कलयुग में सब देशवासी, पहले बाजार में घी नहीं बिकता था, अन्न नहीं बिकता था, अब तो सारे विश्व में ये बिक रहा है। किसी की शादी होती घर वाले सब उसके पड़ोस पड़ोसी घी चावल दाल सब उसके घर में दे देते, उसको कोई खरीदना नहीं पड़ता था, प्रेम से बिना पैसे की ऐसे ही शादी और ये सब चीजें हो जाती थी। इस तरह से वो वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन में पहुंच करके देखा एक बड़ी सुंदरी 15-16 वर्ष की एक लड़की बैठी हुई है तो परम सुंदरी, बड़ी दुखी है, उसके सामने दो वृद्ध आदमी बैठे सोए हुए हैं, बेहोश जैसे हैं, और लड़की रो रही है, कभी इसके सिर पर हाथ रख रही है, कभी उसके ऊपर। नारद जी वहां पर पहुंचे, देखा जी और से आदमी उसको घेर रखे हैं। नारद जी ने कहा, बेटी तुम्हारी ऐसी अवस्था कहां, तुम कौन है, क्यों रो रही है, ये दोनों कौन है? उन्होंने कहा, मेरा नाम भक्ति देवी है और ये हमारे बेटे हैं ज्ञान वैराग्य। ये बूढ़े पड़े हुए हैं, मुझे बूढ़ी होनी चाहिए और हमारे बेटे बूढ़े हैं और मैं नवज्योति हूं। मेरा जन्म हुआ था दक्षिण भारतवर्ष में। दक्षिण भारत माने और द्रविड़ देश में, द्रविड़ माने मद्रास और उसके नीचे कन्याकुमारी तक, श्रीरंगम इत्यादि, ये द्रविड़ देश में। और कर्नाटक उसे ऊपर हमारा, मैं वहां पर बढ़ी। और जब गुजरात में गई, महाराष्ट्र में, बंबई इत्यादि देशों में, बंबई पुणे, तो वहां पर किसी ने आदर किया, किसी ने मेरा आदर नहीं भी किया। आज मैं गुजरात पहुंच गई तो वह मैं बूढ़ी हो गई, हमारे बेटे दोनों बूढ़े, बड़े आश्चर्य की बात। और तब से मैं बूढ़ी थी, घूमते घूमते अपने बेटों को लेकर के इसी अवस्था में वृंदावन में आई। मैं तो ज्योति हो गई, किंतु हमारे लड़के जो दो हमसे छोटे हैं, ये अभी तक सोए पड़े हैं, इनको कोई भी नहीं जगा पा रहा है। मैंने जगाने की चेष्टा की, कुछ नहीं हुआ। वो आपको देखने से मुझे बड़ी शांति आई, आप कृपा करके हमारे बच्चों को भी जल्दी से ठीक कर दीजिए। कैसे होगा? नारद जी ने कहा, जी देखो मैं तुम्हारा ये सब कारण जानता हूं, द्रविड़ में जन्म हुई, वहां पर बड़े बड़े भक्त लोग हुए हैं, इसलिए भक्ति कहां जन्म लेती है, जहां पर भक्त लोग रहते हैं वहां के लोग सुखी रहते हैं, उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है। जब मैं कर्नाटक में आई, कर्नाटक में, तो वहां पर कुछ बड़ी हुई। और बॉम्बे जब आई तब क्या हुआ, बॉम्बे में ठंडाढ्य भी हैं, पुणे इत्यादि में जो हैं वहां पर कुछ धार्मिक लोग भी हैं, भागवत की कथा होती है, बड़े सच्चरित्र होते हैं, माता पिता का भी आदर करते हैं, संतों का आदर करते हैं। किंतु गुजरात ठंडाढ्य देश, हम समझते हैं गुजरात का ही अधिक आदमी आए होंगे इधर में, किंतु यहां पर जैसे हों, किंतु मैं देखा ऑस्ट्रेलिया में, मैंने देखा फिजी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, और समय हमारे गुजराती भाई ही अधिक हैं। और गुजराती भाई लोग अभी देश में भी बड़े धनाढ्य हैं, उनको फुर्सत नहीं है एक मिनट की, दान कर देंगे, पैसे ले जाओ, हमको समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। कोई संत बैठ गया, भैया पैसा ले लो, हमको समय नहीं है, 5, 10, 20, 25 फोन लगे हुए हैं, इधर उधर देख रहे हैं, फुर्सत नहीं। इसलिए भक्ति देवी वहां पर बूढ़ी हो गई, और उनको ज्ञान तत्व ज्ञान इत्यादि, जो भगवान क्या है, जीवात्मा क्या है, कैसे सुख, ये सब नहीं, इसलिए उनके दोनों बेटे बूढ़े हो गए। जब वृंदावन में आए तो क्या देखा, भक्ति देवी तो परम सुंदरी हो गई, क्योंकि भक्ति वहां करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, घर घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, घर घर में तुलसी है, वहां पर ऐसा कोई घर नहीं जहां पर राधा कृष्ण की मूर्ति और वहां पर पूजित नहीं होता, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर भागवत नहीं होता, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर कीर्तन नहीं होता। इसलिए भक्ति देवी तो हो गई नौजवान, किंतु ज्ञान बैराग को वहां कोई आदर नहीं करता, इसलिए वो बूढ़े के बूढ़े रह गए। अब ये नारद जी से कहा, जी हमारे बच्चों को भी तो आप बनाइए, कैसे ये ठीक होंगे। इस तरह से नारद जी, अच्छा तुम ठहरो यहीं पर, हो मैं अभी खोज करके कोई उपाय आता हूं और बच्चों को जरूर मैं नौजवान कर दूंगा। चल करके वो खोजते खोजते भारत वर्ष में सब तीर्थों में गए, किसी से पूछा, ये उसके ज्ञान वैराग्य के बेटे कैसे वो सुखी होंगे, कैसे नौजवान होंगे, कोई नहीं बतला सका। अंत में भविष्यवाणी हुई, जो तुम जाओ खोजो, तुमको रहस्य इसका मिलेगा, कोई महात्मा संत तुमको बतलाएगा। खोजते खोजते हरिद्वार में पहुंचे, यहां पर आनंद घाट है, विशाला उसको कहते हैं, वहां पर पहुंचे और वहीं पर उनको सनक सनंदन सनातनियों से भेंट हुई। नारद जी से उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया इसलिए यहाँ आया। उन्होंने कि भागवत सप्ताह करो, 7 दिन तक भागवत की कथा सुनो खूब अच्छी तरह से, तुम्हारा कल्याण होगा, जरूर भक्ति देवी के बेटे भी उठाएंगे, भक्ति देवी भी प्रसन्न होगी, तुम लोग सभी लोग प्रसन्न हो जाओगे। उसमें कुछ ऐसे चीजें हैं, उपदेश हैं, नए उपदेश होने से कोई भागवत की कथा सुनता है, भगवान अपने स्वरूप से उसके कानों के भीतर में प्रवेश करके चले जाते हैं, उसके सब मैल को दूर कर देते हैं, पापों को दूर कर देते हैं, सद्बुद्धि दे करके और उसको भक्ति दे करके गोलोक वैकुंठ में ले लेते हैं। वही हमारा मूल स्थान है, बैक टू होम, बैक टू गॉड, भगवान के पास चलो, वही हमारा स्थान है, वहीं से आए हैं भूल करके। इसलिए इस चीज को समझ करके कल से हम भागवत की कथा आरंभ करेंगे। मन से आप लोग 1.5 घंटे आप लोग देंगे, उसमें निश्चिंत रह करके ये करना है वो करना है, नहीं वो सब बंद करके। यहाँ पर फोन लाने से गड़बड़ होगा, कह देंगे भैया हम 1.5 घंटे के लिए फोन का व्यवहार नहीं करें, नहीं तो वही चिंता रहेगी। वृंदावन में भजन कर रहे हैं और अपने घर की सोच रहे हैं, और घर वाली सोच रही है कि हाय हमारे पति वृंदावन में होंगे, भजन कर रहे होंगे, और मैं दुर्भागी, उसको वृंदावन का फल मिल जाएगा और पति घर में जाएगा, समझ रहे हैं ना। इस तरह से आप लोग समझ करके भागवत की आज यही पर समाप्त करता हूँ, एक कीर्तन के द्वारा समाप्त कीजिए, इसके बाद में आरती कर करके अभी भोग लगा देंगे यदि आया है तो, और उसको सबको वितरण कर देंगे। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण हरे।